अभिमन्यु को इशिका के साथ गोवा जाना था, इसलिए वो सुबह के लगभग 8 बजे ही आशुतोष से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच गया था। अभिमन्यु ने आशुतोष के सामने खुलकर आशिका का नाम नहीं लिया, बस उनकी खोई हुई बेटी को ढूंढने का कहकर उसने काफ़ी आसानी से आशुतोष का ब्लड सैंपल ले लिया था। भले ही अभिमन्यु ने आशी की शादी बर्बाद की हो, लेकिन आशुतोष जानते थे कि वो एक अच्छा इंसान है। अभिमन्यु ने आशुतोष से तो उनका ब्लड सैंपल ले लिया था, लेकिन आशिका के मामले में ये आसान नहीं रहने वाला था। उसे पहले से ही शक था कि आशुतोष उसके पिता हो सकते हैं। उसके बावजूद वो इस मामले में कोई छानबीन नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु इस वक्त पृथ्वी के साथ गाड़ी में था। उसने पृथ्वी की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, ब्लड सैंपल को लैब में सुरक्षित रखवा देना। मुझे डाउट है कि आशिका इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है और हमें टेस्ट करवाने में टाइम लग जाएगा। अगर बात उनके खून लेने की ही है तो और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप इस मामले में अभिमान की हेल्प ले सकते हैं। आफ्टरऑल आशुतोष सिंघानिया की असली बेटी अभिमान की बचपन की फ्रेंड थी, पृथ्वी ने सुझाव देते हुए कहा। वैसे भी वो अभिमन्यु के साथ लंबे समय से काम कर रहा था तो हर किसी के बारे में अच्छे से जानता था। हाँ, लेकिन मैं किसी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। हो सकता है आशिका का शक उसके मन का वहम हो। ऊपर से वो खुद नहीं चाहती थी कि मैं इस बारे में किसी को कुछ बताऊं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। आशिका के साथ किए वादे को निभाते हुए अभिमन्यु ने इस बारे में इशिका से भी डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, फिर ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आशिका का ब्लड सैंपल लेकर आऊँगा, पृथ्वी ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वे इशिका को रिसीव करने के लिए चले गए थे। उन्हें वापस गोवा लौटना था। वहीं दूसरी तरफ रात को देर तक जागने की वजह से अभिमान और आशिका दोनों देर तक सोए हुए थे। उन दोनों के कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे और दोनों को ही इस बात की कोई परवाह नहीं थी। सुबह 8:30 बजे के करीब अभिमान के बाहर न निकलने पर निशा ने दरवाज़ा खटखटाया और इसी के साथ दोनों की नींद टूटी। वे दोनों बेड पर एक ही ब्लैंकेट में दूर दूर सोए हुए थे। आशिका ने बंद आंखों से ऊँघते हुए कहा, देखो मुझे ज़्यादा सोने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो मुझे थोड़ी देर भी नहीं सोने देती है। मुझे एक रिलैक्सिंग स्लीप चाहिए, चाहे वो थोड़ी देर की ही क्यों ना हो। मेरे साथ ऑफिस चलो, वहाँ ऊपर हमारे घर के अंदर जाकर सो जाना, अभिमान ने जवाब दिया और फिर उठकर बैठ गया था। आशिका अभी भी ब्लैंकेट में सिमटी हुई थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, जिसे देखकर अभिमान हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वो आशिका के बालों में प्यार से हाथ फेरने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी आशिका ने आंखें खोलकर उसकी तरफ घूर कर देखा। इससे अभिमान का हाथ हवा में ही रुक गया था। क्या करने जा रहे थे, आशिका ने उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा। तुम्हारे बाल बिखरे हुए थे, बस सही कर रहा था, अभिमान ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभिमान की आंखें साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों के भाव नरम थे। न जाने क्यों वो आशिका के सामने अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाता था। आशिका ने भी बिना कुछ कहे सर हिला दिया था। एक बार फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई और बाहर से निशा ने तेज आवाज में कहा, अभिमान बेटा सब ठीक है ना, आज से पहले तुम इतनी देर तक नहीं सोए हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभिमान ने तेज आवाज में जवाब दिया तो निशा ने खटखटाना बंद कर दिया था। आशिका ने कमरे की तरफ नजरें दौड़ाई तो उनके कपड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और अभिमान की तरफ देखकर कहा, अपना चेहरा उधर करो, मुझे बाथरूम में जाना है और प्लीज मेरे लिए कपड़ों का अरेंजमेंट कर दो। मुझे उधर देखने को क्यों कह रही हो, तुम इसी ब्लैंकेट के अंदर मेरे साथ बिना कपड़ों के सो रही थी, अब किस चीज़ की शर्म आ रही है तुम्हें, अभिमान ने उसे तंग करते हुए कहा। आशिका ने उसे देखकर कंधे उचकाए। अभिमान की नज़रें उसी की तरफ टिकी हुई थीं। तभी आशिका ने पूरी ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचा और खुद को उसमें लपेट कर चली गई थी, जबकि अभिमान हैरानी से आंखें बड़ी करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने जल्दी से बेडशीट निकाली और खुद को कवर करते हुए बोला, हे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम कितनी रूढ़ हो यार, कम से कम वार्निंग तो दे ही सकती थी। आशिका उसकी तरफ पलटी और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ऐसी ही हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई थी, जबकि अभिमान आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहा था। उसने उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया था। बाथरूम में आने के बाद आशिका ने गहरी सांस ली और अपने लेंसेज बाहर निकाले। एक बार फिर लेंस लगाकर सोने की वजह से वे खराब हो चुके थे। खुशकिस्मती से अभिमान पिछली बार उसके लिए 2 सेट लेकर आया था। आशिका बाथरूम के दरवाजे के पास आई और झुंझलाते हुए बोली, अगली बार रात को मेकआउट करने का प्लान हो तो सबसे पहले मेरे लिए लेंसेज का एक केस लेकर आना और कलर सेम होना चाहिए। इससे बेहतर ये नहीं रहेगा कि मैं लाइट बंद कर दूं, अभिमान ने चिल्लाकर जवाब दिया। आइडिया अच्छा है, पहले क्यों नहीं बताया, आशिका बोली और फिर दूसरी तरफ चली गई थी। अभिमान के फेस पर अचानक हल्की स्माइल आ गई थी। वो दरवाजे के पास आया और आशिका को फिर से परेशान करते हुए बोला, इसका मतलब अगली बार भी तुम मेरी डिमांड पूरी करने वाली हो? बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो अभिमान राजवंश, हम दोनों की शादी हो चुकी है और ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। तुम कोई टीनेजर हो जो अपनी क्रश के सामने नर्वस होकर उसके साथ रात बिताने का कह रहे हो? आशिका ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया। इसी के साथ अभिमान का मुंह बन गया था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव यही कह रहे थे कि आशिका जैसी ओवर प्रैक्टिकल और लॉजिकल लड़की के सामने इमोशंस की बात करना बेकार था। फिलहाल उसे आशिका के लिए कपड़ों का अरेंजमेंट करना था, लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आशिका का सामान खुद ब खुद उनके घर पर पहुंच चुका था, जो अभिमन्यु ने ही भिजवाया था। कुछ ही देर में आशिका तैयार होकर अभिमान के सामने खड़ी थी। उसने पहले की तरह लूज पैंट्स, टी शर्ट और उसके ऊपर शर्ट डाल रखा था। पहले की तरह उसने अपने बाल बांधे नहीं थे, लेकिन हाँ, कैप जरूर लगा रखी थी। अभिमान के लिए ये सब नया नहीं था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर आशिका इन कपड़ों में नीचे गई तो सबसे पहले उसकी फैमिली वाले उसके कपड़ों को लेकर बवाल मचाने वाले थे। क्या तुम ये पहनकर नीचे जाने वाली हो? अभिमान ने भौहें उठाकर पूछा। वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम भी तो हमेशा की तरह तैयार हुए, आशिका ने जवाब दिया। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन... अभिमान उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आशिका ने उसे बीच में काटते हुए कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। अभिमान ने उसकी बात पर हामी भरी। उन्होंने ब्रेकफास्ट बाहर करने का ही सोचा था। जैसे ही अभिमान और आशिका कमरे से बाहर निकले और निशा की फ्लोर पर पहुंचे तो निशा पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही निशा की नज़र आशिका की तरफ गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। नीचे हाउस हेल्पर ने बताया था कि तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, फिर तुमने अभिमान के कपड़े क्यों पहने हैं? निशा हैरानी से बोली, ये अभिमान के कपड़े कैसे हो सकते हैं? उसकी हाइट मुझसे काफी ज्यादा है, क्या आपने इसे कभी छोटी पैंट पहने हुए देखा है? और ये शर्ट इसे बहुत टाइट रहने वाला है, वो लूज शर्ट पहनना पसंद करता है, आशिका ने जवाब दिया।
हालांकि और कोई मोमेंट होता तो अभिमान उसके इस जवाब पर बहुत खुश होने वाला था। आशिका ने उसके ड्रेसिंग सेंस को इस हद तक नोटिस किया था, उसे अंदाजा नहीं था। लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। इससे पहले कि आशिका और निशा के बीच बहस होती और फिर से उनके रिश्ते खराब होते, अभिमान ने बीच में सफाई देते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, ये इसी के कपड़े हैं और ऐश इसी तरह के कपड़े पहनती है। शाम को मिलते हैं मॉम, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है और ऐश भी मेरे लिए काम करती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बिना एडजस्ट कर पाऊंगा। वो जल्द से जल्द आशिका को वहां से लेकर निकल जाना चाहता था। अभिमान ने आशिका का हाथ पकड़ा और वहां से जाने को ही हुआ, तभी निशा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। वो अभिमान की तरफ घूर कर देख रही थी। आज तुम इसे लेकर कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ रस्में निभानी हैं। मैंने बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया है, मंदिर में पूजा करवानी है और बहुत कुछ, निशा ने अभिमान की तरफ देखकर कहा। अभिमान आकाश के होते हुए आशिका को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, वो मना करना चाहता था, लेकिन तभी आशिका ने उसका हाथ हल्के से दबाया। जब अभिमान ने आशिका की तरफ देखा तो वो पलकें झपकाकर बोली, डोंट वरी अबाउट मी, मैं हैंडल कर लूंगी और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो तुम्हारी मॉम मुझे बता देंगी। इशिका ने उसे यही समझाया था कि अगर वो अभिमान के साथ अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी भी सीरियस है तो उसे बाकी घर वालों का दिल जीतने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। पहली बार उसे मौका मिला था कि वो किसी फैमिली के बीच रह रही थी, ऐसे में आशिका ने वही रुकना सही समझा। आर यू श्योर? अभिमान ने उसकी तरफ देखकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आशिका ने जवाब दिया। उसकी आंखों में अपने लिए परवाह देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। अभिमान ने उसकी तरफ सिर हिलाया और फिर निशा की तरफ देखकर बोला, ठीक है फिर, आपको जो करना है कर लीजिए और जब ये सब हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, या तो मैं आश को लेने के लिए ड्राइवर भेज दूंगा या खुद आ जाऊंगा। अभिमान अभी भी पूरे दिन आशिका को अपने परिवार के साथ छोड़ने के लिए कन्विंस नहीं था। निशा को उसका ये बदला हुआ रूप देखकर हल्की हैरानी हो रही थी, फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अभिमान की बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। आशिका को अपना ख्याल रखने का बोलकर अभिमान वहां से चला गया था। निशा के सामने उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाहर निकलते ही अभिमान ने आशिका को यही मैसेज किया कि अगर उसे थोड़ी सी भी गड़बड़ नजर आए या कोई उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे तो वो डायरेक्ट उसे कॉल करे। वहीं अभिमान के जाते ही निशा ने आशिका की तरफ एक बार अजीब नजरों से देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम विदेश में पली बड़ी हो, इस वजह से तुम्हें यहाँ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, शायद तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहती थी, दूसरी बात मुझे उनसे कुछ नहीं सीखना, आशिका ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारी अपनी माँ से नहीं बनती और वो एक अच्छी औरत भी नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्हें यहाँ के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है। अगर तुम उनके साथ रहती तो शायद इंडियन कल्चर और परिवार की वैल्यूज़ के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता चलता, निशा ने सख्त शब्दों में कहा। आशिका उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही निशा ने कहा, शादी के बाद लड़कियां इस तरह के कपड़े अपने ससुराल में नहीं पहनती हैं, लेकिन तुम आजकल के बच्चे कहाँ समझते हो। ठीक है, बाद में अपने हिसाब से रह लेना, लेकिन शुरू के दिनों में पूजा और मंदिर जाना होता है, मेहमान आते हैं तब तुम ठीक से कपड़े पहन सकती हो, और आज कुछ गेस्ट घर पर आएंगे, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी, मेरे साथ चलो। आशिका ने बिना कुछ कहे उनकी बात पर हामी भरी और उनके साथ उनके कमरे में आ गई थी। निशा ने आशिका को पहनने के लिए साड़ी दी। आशिका की नज़र साफ बता रही थी कि उसे साड़ी पहनना नहीं आता है। निशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पहनना है, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस। क्या आप कुछ और नहीं दे सकती हैं? आशिका ने नरम लहजे में कहा। इस समय उसका बर्ताव कहीं से भी रूखा नहीं लग रहा था। आशिका ने यही सोचा था कि अगर निशा उसके साथ प्यार से पेश आ रही है और उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही है तो वो भी अच्छे से पेश आएगी। निशा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर आशिका के लिए एक सूट मंगवाया। उसने आशिका को तैयार करने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया था। बेज कलर का सूट पहना हुआ था जो स्लीवलेस था। लाइट ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आशिका को बिना किसी मेकअप के सिंपल रहना पसंद था। तैयार होकर जब आशिका बाहर आई तो निशा ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो बोली, अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए इस तरह के और कपड़े मंगा दूंगी, उम्मीद है कि तुम आगे से इसी तरह के कपड़े पहनोगी और बिना किसी जिद के मेरी बात मानोगी। आशिका इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने निशा की बात पर हामी नहीं भरी थी। मुंह दिखाई की रस्म का बोलकर निशा ने आशिका को नीचे भेज दिया था। जैसे ही आशिका उससे दूर गई, निशा ने तृप्ति को मैसेज किया, मेरा ये करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जैसा कि आपने कहा था, मैंने मुंह दिखाई की रस्म की पूरी तैयारी कर ली है और गेस्ट को भी बुला लिया है, आगे क्या करना है मुझे बता दीजिए, निशा ने लिखा था। वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तृप्ति और आशि के प्लान के तहत कर रही थी, जो इस वक्त दोनों साथ में ही मौजूद थी। तृप्ति ने तिरछा मुस्कुराते हुए आशि की तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया था। इसी के साथ उनके प्लान का पहला स्टेप पूरा हो गया था और आगे का प्लान पूरा करने के लिए आशि और तृप्ति पहले से तैयार थीं।